हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी श्री वृंदावन धाम में राधा रमन जी के मंदिर में आए हैं और राधा रमन मंदिर के सामने ये जगह जो है इसको राधा रमन प्राकट्य स्थली कहते हैं, द प्लेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ राधा रमन जी। इसकी कहानी ऐसी है, संक्षेप में कहा जाए तो चैतन्य महाप्रभु जी के 6 गोस्वामी शिष्य हुए हैं, तो उनमें से सबसे छोटे उम्र के और साउथ इंडियन गोस्वामी जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके पिताजी वेंकट भट्ट जो थे वो रंगनाथ जी के पुजारी थे वेंकट भट्ट, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण के युगल अवतार हैं वो अपने दक्षिण भारतीय यात्रा में श्रीरंगम में 4 महीने के लिए वेंकट भट्ट के घर पे रंगनाथ में रुके थे। श्रीरंगम इस जगह पर श्रीरंगनाथ जी के मंदिर के वो पुजारी थे, उनके घर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु रुके, 4 महीने के लिए रुके। तभी छोटा गोपाल 5 साल का था और वेंकट भट्ट के भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती, जिनकी समाधि कालियाघाट पे हैं। तो उस घर में रात भर ये लोग गोपाल, छोटा गोपाल, वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु और प्रबोधानंद ये बैठकर कृष्ण कथा करते थे, वो पूरे दिन चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे। 4 महीने के पश्चात जब ही चतुर्मास समाप्त हो गया, जाने का समय आया, तो गोपाल उनके साथ चलने लगा कि इतना उनसे आसक्त हो गया महाप्रभु जी से कि मैं आपके संग चलूँगा। तो महाप्रभु ने छोटे गोपाल को आदेश दिया, अभी माता पिता की सेवा करो, जब माता पिता अंतर्धान हो जाएंगे तो उसके बाद वृंदावन में आना, फिर हमारी मुलाकात होगी। तो उन्होंने काफ़ी साल तक सेवा किया माता पिता की। जब माता पिता अंतर्धान हो गए तो वे छोटा गोपाल जो बड़े हो गए थे अभी गोपाल भट्ट जी, वो वृंदावन आए और यहाँ पर उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ से पुरी चले गए हैं, लेकिन उनके लिए आदेश वृंदावन में आने का था, इसलिए वो यहाँ छोड़कर पुरी चले गए नहीं, यहीं रह गए। लेकिन महाप्रभु जी का विरह बहुत हुआ उनको, तो महाप्रभु जी ने उनके लिए अपना वस्त्र और अपना बैठने का आसन भेंट में भेज दिया उनके विरह को कम करने के लिए। फिर भी उनका विरह था ही महाप्रभु के प्रति, तो फिर महाप्रभु जी ने उनको सपने में आदेश दिया कि आप नेपाल में जाओ, जहाँ पर गंडकी नदी है, अभी आज वो पोखरा नाम की जगह है, वहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको मेरे दर्शन होंगे। तो ये यहाँ से नेपाल चल के गए और नेपाल काठमांडू के आगे 300 किलोमीटर पोखरा है और पोखरा के आगे 80 किलोमीटर गंडकी नदी है, काली गंडकी बोलते हैं। तो उसमें जब स्नान कर रहे थे तो अपने आप सूर्य को अर्घ देते समय उनके कमंडल में 12 शालिग्राम शिला प्रवेश किया। आमतौर पे शिला नदी के तल में होती है, सरफेस पे नहीं होती। सरफेस से हम लोग अर्घ्य अर्पण करते हैं, है ना, कभी भी सरफेस से आचमन करते हैं, सरफेस से पानी पीते हैं। तो पृष्ठभाग से ही 12 शिलाएं कमंडल में प्रवेश की, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया पानी में, दोबारा अर्घ्य दिया तो दोबारा 12 शिला प्रवेश कर दी, दोबारा चला दिया तो तीसरी बार वापस वही शिलाएं कमंडल में प्रवेश कर दिए। उसमें भगवान ने आवाज़ का दर्शन दिया, तो भगवान ने कहा कि इसी रूप में मैं आपके साथ में आने वाला हूँ। सुनाई पड़ रहा है ना आपको, भगवान ने कहा कि यही मेरा स्वरूप है, इसमें मैं आपके साथ आ रहा हूँ, आप मेरी सेवा कीजिए। तो उस 12 में से एक बड़ी शिला थी, उसका नाम था दामोदर शिला, तो उन शिलाओं को लेकर वो यहाँ पर आए और यहाँ पर इस जगह पर उनकी सेवा करने लगे। काफ़ी दिन सेवा किया उन्होंने। तो एक दिन एक राजा आया, एक धनी आदमी आया, उसने वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं वो सब मंदिर में पोशाक, मुरली, अलंकार, वस्त्र सब भेंट दिया। हाँ, तो इनके पास भी आए और इनको भी दिया। तो उन्होंने कहा मेरे ठाकुर जी को अंग तो है नहीं, मेरे ठाकुर जी को हाथ पैर नहीं है, वो तो गोल गोल है, गोल मटोल, तो मैं क्या करूँगा उनके लेके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सबके लिए लाया हूँ, आपको भी लेना पड़ेगा। तो उन्होंने रख लिया। तब इनके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना मेरे ठाकुर के भी अंग आ जाए, सुन रहे हैं ना, क्यों ना मेरे ठाकुर को अंग प्राप्त हो जाए, ऐसा मन में विचार है, इच्छा प्रकट हुई। तो नरसिम्हा चतुर्थी का दिन आया, चतुर्दशी का, उस दिन मंदिर में प्रोग्राम होता है, भागवत खोलते हैं हम लोग और महाप्रभु सॉरी चैतन्य महाप्रभु नहीं नरसिंह भगवान का लीला पढ़ते हैं। तो उन्होंने भागवत खोला और लीला सुना, पढ़ के सुनाया लोगों को। आखिर में क्या आता लीला में, प्रहलाद ने उंगली दिखाया इसमें भी है, तो उनके एक इशारे में नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो गए, एक क्षण, तत्क्षण बोलते हैं उसको। तो ये कथा सुनने के बाद वो खुद ही पढ़ रहे हैं, उनको पता है इस पॉइंट पर, उनको एक ऐसा भावना हुई कि अरे प्रहलाद के एक उंगली के निशाने से एक ही बार एक क्षण में अगर वो प्रकट हो सकते हैं तो मेरे शालिग्राम से क्यों नहीं प्रकट हो सकते, ऐसा उनको लगा मन में। और ये विचार लेकर रात को सो गए वो, सब शिलाओं को शयन कराया रुमाल रख के। और जब अगले दिन सुबह उठे, वो दिन के तिथि कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख शुद्ध चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, अगले दिन पूर्णिमा। जब उठे सुबह तो एक रुमाल ऐसे ऊपर था उठा हुआ, झट से जमुना जी में स्नान किया, जमुना जी यहाँ बहुत पास में है, 2 मिनट के वॉकिंग पे, स्नान किया और भाग के आके शुद्ध होके जब शयन निकाला तो दामोदर नाम के शिला के सामने से भगवान प्रकट हो गए थे। तो इस जगह पर दामोदर नाम के शिला के अग्रभाग से 12 उंगली के साइज के राधा रमन जो आपने देखे वो प्रकट हुए, आज भी उनके पीछे पैर के पीछे शालिग्राम शिला है जिनसे वो प्रकट हुए थे। तो ये जब वैसे प्रकट हो गए तो क्योंकि उम्र में सबसे छोटे थे वो गोस्वामी जी, हाँ, तो उन्होंने सभी बड़े गोस्वामी को बुलाया, रूप गोस्वामी को बुलाया, सनातन जी को बुलाया, सबको बुलाया उन्होंने। तो रूप गोस्वामी उनके नेता थे, तो रूप गोस्वामी ने देखा मूर्ति को और बताया कि जो मदन मोहन जी के चरण हैं वो इनमें हैं, जो गोविंद जी का वक्षस्थल है वो भी इनके अंदर दिखाई पड़ता है, और जो गोपीनाथ का मुख कमल है वो भी इसमें दिखाई पड़ता है। तो चरण कमल और वक्षस्थल और मुख कमल के 3 मूर्तियाँ बनी थी अलग अलग, तो तीनों दर्शन एक मूर्ति में, ऐसे रूप गोस्वामी ने बताया उनको। और उन्होंने नामकरण किया उसका राधा रमण देव करके। तो इसका अर्थ यह है कि राधा रमण देव भक्तों की इच्छा तत्क्षण पूरी करने वाले हैं, जो व्यक्ति हृदय से इच्छा प्रकट करता है तुरंत भगवान उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। हमारे गुरु महाराज का वीसा खत्म हो गया था एक ज़माने में, तो पुलिस उनके पीछे लगी थी वृंदावन में, तो राधा रमन जी के मंगला में आए और उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान अभी आप ही कुछ कर सकते हो। तो आप लोग सब लोग पढ़िए, जर्नी हो अभी मेरे को समय नहीं बताने के लिए, बहुत लंबी कथा है वो, कैसे महाराज जी को राधा रमन देव ने वीसा दिलाया और कैसे वो भारत में रहे, तो वो आउटकास्ट होने वाले थे रस्टिकेट इंडिया से। तो राधा रमन चमत्कारी भगवान है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जब भी ये प्रकट हो गए तो उनको लगा कि उत्सव करना चाहिए, भगवान मेरे घर प्रकट हो गए, उन्होंने सब व्यापारियों से लोन लिया और उत्सव मनाया और व्यापारियों को बताया कि मैं 2 हफ्ते में आपका पैसा चुका दूंगा। तो 10 दिन गए, 12 दिन गए, कोई डोनेशन नहीं आया, उन्होंने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया, शोभा यात्रा निकाली, अभिषेक किया, 56 भोग खिलाया, सब कुछ बहुत भव्य उत्सव किया, उसमें काफ़ी लीला है उसके अंदर, बड़ी लंबी लीला है। लेकिन 14 दिन के बाद भी उनको कोई डोनेशन नहीं मिला। 14वें दिन की रात को इनको नींद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने वादा किया था ना कि पैसा ला के दूंगा, पैसा है नहीं। तो एक सच्चा दिल का आदमी जो होता है वो ऐसा उसको दुख होता है कि मैंने अपना शब्द पूरा नहीं किया। तो 15वें दिन ये सभी व्यापारियों को मिलने गए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। लेकिन हर एक व्यापारी ने कहा क्यों महाराज ऐसे कह रहे हो, आपने कल ही तो ला के दिया पैसा सब कुछ। अगले वास गए तो भी बोले कि महाराज शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, कल ही आप आए थे पैसा लेकर आप देखे गए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। तो 2-3-4 लोगों के बाद मिलने के बाद उनको ऐसा अनुभूति हुई कि राधा रमन जी स्वयं गोपाल भट्ट का स्वयं बनकर सबका पैसा चुका कर आए थे। राधा रमन लाल की जय। हमारे संप्रदाय में गोपाल भट्ट गोस्वामी आते ना, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का मंदिर जो है इसमें सबसे ऊंचे तरीके से भगवान के विग्रहों की पूजा होती है। तो अगर आपको डीटी वर्शिप सीखना है तो राधा वल्लभ राधा रमन जी के मंदिर का शेड्यूल जो है वो जिस प्रकार से करते हैं वो सबसे सर्वोच्च भगवान के विग्रहों की पूजा करने की पद्धति है, ऐसे प्रभुपाद जी बताते थे। इनकी जो 17वीं पीढ़ी है वो आज चल रही है, रंगनाथ के मंदिर में भी 17वीं पीढ़ी चल रही है। तो रंगनाथ के जो पुजारी है वही हमारे मित्र हैं मुरली भट्टार, और यहाँ के जो पुजारी हैं पद्मनाभ गोस्वामी भी हमारे मित्र हैं। तो प्रभुपाद जी इनके पिताजी के मित्र थे, उनका नाम था विश्वंभर गोस्वामी। तो विश्वंभर गोस्वामी और प्रभुपाद जी अच्छे मित्र थे, उनके पिताजी और प्रभुपाद के गुरु जी अच्छे मित्र थे, और ठाकुर भक्ति विनोद भी राधारमण में आया करते थे और यहाँ के गोस्वामी उनके लिए प्रचार की व्यवस्था करते थे। और इनके पास अभी भी नोट्स हैं कब प्रभुपाद जी उनके घर पे आए, कब रुके, कब प्रसाद लिया, डेट वाइज नोट्स है उनके पास। और हमारा सौभाग्य यह है कि विश्वंभर गोस्वामी महाराज जो है ना वो हमारे हॉस्पिस की जगह है ना वो उनकी जगह थी पहले, उधर उन्होंने तपस्या किया है और भजन किया है विश्वंभर गोस्वामी ने, आज से 100 साल पहले की बात है। तो वो जगह फिर हमने पद्मनाभ गोस्वामी से खरीद लिया और अभी हमारा हॉस्पिस वहाँ पर विराजमान है। तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिए, राधा रमन जी भगवान बड़े दयालु हैं और भक्तों की इच्छा तत्क्षण पूरी करने वाले हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए, भक्ति की मांग कीजिए, चरणों की सेवा मांगिए, राधा कृष्ण के चरणों में भजन और प्रीति मांगिए। जय जय राधा रमन भगवान की, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
गोरस के भरे है कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, गोरस के भरे है कपोल, जय जय राधा रमण हरि।